نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستو, پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں, استحباب طیب الکلام. پہلے سے ادب کی بات چل رہی ہے, انسان کو اپنی زندگی میں ادب والی زندگی رکھنی چاہیے. اس میں سب سے بڑی بات ہے, جب کسی سے ملو تو خوش کلامی اور ملاقات کے وقت چہرے کو مسکراتا ہوا ملنا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی کے ساتھ ملاقات کرے اس وقت اپنا چہرہ ہنستا ہوا رکھے اور جب بات کرے تو اچھی طریقے سے بات کرے. اس قسم کے معاملات میں جیب سے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, یعنی کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا عجیب غریب اور ایسا عجیب غریب نسخہ ہے ہنستے ہوئے ملنا اور مسکراہٹ اور اچھی طرح بات کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اس سے ہر کس ناکس ہر آدمی, دشمن بھی دوست بھی, اپنے بھی پرائے بھی مسخر ہو جاتے, تابع ہو جاتے بات ماننے پر. جو لوگ اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں لوگ ان سے بہت قریب قریب آتے ہیں, بہت قریب آتے ہیں. آج کل لوگ تجارت میں یہی ہوتا ہے, ہنستا ہوا چہرہ ہو تو کسٹمر کو کھینچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے, کہ لوگوں کا استقبال کیا جائے, اقبال نہیں استقبال کیا جائے, ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ویلکم کیا جائے. سو یہ ایک آج کل تو مستقل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ دا کسٹمرز, ان کو یہ سب بتلایا جاتا ہے کہ کیسے آپ ملے, ملاقات کیسے کریں, ویلکم کیسے کریں, ہنستا ہوا تھوڑا سا, یو نو, اس قسم کی باتوں سے وہ کسٹمر کو کھینچ لیتے ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیزنگ سنت ہے, خوش کلامی, اچھی طرح بات کرو, اور دوسرے نمبر پر چہرہ ہنستا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ جیسے ابھی کیسٹر آئل پی کر آیا ہے ایک کلو, ایسا نہیں, سمجھے. آپ دیکھیے اس سنت کو ادا کیجیے, آپ کی بیوی بھی قریب ہو جائے گی, کتنی جھگڑا کرنے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جس کو دل جوئی کرنا کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے سے, सामने वाले का दिल को जीत लेना। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल एक चैप्टर बनाते हैं, बाबू अल मुदारा मा अन्नास, लोगों के साथ किस तरीके से मिलना है, स्पेशल चैप्टर है बुखारी शरीफ में। और उसमें हदीस नकल की है अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अनु का, गोया उनकी बात नकल की है, बहुत से लोगों के सामने हम मुस्कुराते हैं, हम क्या करते हैं मुस्कुराते हैं, हालांकि हमारे दिल उन पर लानत कर रहे होते हैं। जिसको आज की आपकी यानी आमाल की वजह से दिल उनसे खुश नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्या उनसे मुस्कुराकर मिलते हैं, हंसते चेहरे से मुलाकात करते हैं। उसमें से एक है इदखालुस सुरूर, किसी के दिल में खुशी को उतारना, किसी के दिल में मसर्रत और खुशी को उतार देना, कोई भी हो। जब आप किसी के साथ खुशी से मिलेंगे, अच्छे नरम लहजे से बात करेंगे, तो उसका दिल खुश होगा। लेकिन ये बात हर जगह नहीं, औरतों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दरवाजे पर कोई अननोन आदमी, अजनबी, महरम नहीं, गैर महरम आए, तो उनके साथ सख्त लहजे में बात करना है। इतने भी नरम लहजे में नहीं कि उसके दिल में या तुम्हारे दिल में या उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर माल फिर काम क्या है आगे बिगड़ जाता है। वहां तो इस तरीके से हाँ भी हाजी साहब नहीं है, या अभी फुलाना साहब नहीं है, बाद में आना, ये ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, आ जाओ चाय पी लो, हाजी साहब आएंगे तब आएंगे, ये सब सही नहीं है। ये तरीका सिखाया इस्लाम ने औरतों को, आपस में एक दूसरे को मिलना, औरतों का औरतों के साथ मिलनसार जिसको कहते हैं, खुश कलामी जिसको कहते हैं, अच्छी बात और मुस्कुराहट और नरमी से मिलना, ये रिवायत हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। एक मरतबा एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए इजाजत मांगी, दरवाजे पर आ गया, मैं अंदर आ सकता हूं, जगह मैं घर में आ सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज पहचान ली, कौन है सामने कोई। अब फरमाया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अंदर कह दिया, साहबी नहीं थे, एक आदमी था, मुनाफिक होगा, लेकिन दरवाजा नॉक किया तो पूछा कौन, मैं आ सकता हूं, उसी आवाज से ही अल्लाह के नबी ने पहचाने बाहर कौन है। बाज मरतब आदमी जाना पहचाने आवाज पहचान लेता है। तो आपने हजरत आयशा से कहा, बीस इब्नुल अशीरा, ये कौम का अशीरा, कौम का कबीले का बहुत बुरा आदमी है, ये किसको कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी अंदर घर में। उनके बाद दरवाजा खोल कर आइए, उनको आने की क्या है इजाजत दी, यानी अच्छी तरीके से उनको क्या है उस आदमी को आने की इजाजत दी। जब वो आकर बैठा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बहुत नरमी से बात की, बहुत खुश कलामी के साथ बात की, अंदर में क्या कहा, ये जरा कबीले का बुरा आदमी है, लेकिन जब उसके सामने वेलकम किया, समझ में आई बात, तो क्या होता है, चाहे दुश्मन भी हो लेकिन खुश कलामी हो, मुस्कुराहट हो, अंदर में हमें पता है कौन है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हंसने से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए यहां पर जब वो चला गया, अच्छी तरह बात की अल्लाह के, बहुत अच्छी तरीके से हंसते हुए चेहरे से, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अब पूछा, या रसूलल्लाह आप तो कह रहे थे बीस इब्नुल अशीरा, ये तो कौम का बहुत खराब आदमी है, और आप तो बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, यू वॉज टॉकिंग टू हिम सो नाइसली, स्माइलिंग है। तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आयशा आदमी के लिए बात बहुत बुरी है कि लोग उसकी बुरी आदत की वजह से उसको छोड़ दें। भाई तो ऐसा ही है, अच्छे अखलाक से मिलेंगे। मैंने तुझे कहा था कि ये कबीले का बहुत बुरा आदमी है, वो उन हालात की वजह से था जो उसके अंदर में था कि बुरा आदमी है, इट्स अ बैड पर्सन। लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि मैं भी उसके साथ बुराई का मामला करूं, होगा अपना, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको अच्छे अखलाक के साथ, नरम गुप्तगु से के साथ बात की, तो उसके दिल के ऊपर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। कि वो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाला बन गया। इसीलिए काजी यहिया इब्ने अकसम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े काजी जज थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने उसको बुलाया कि आज यू हैव टू स्पेंड योर नाइट एट माय हाउस, मेहमान बने मेरे घर के। हारून रशीद बादशाह था, हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह था। एक मर्तबा अपनी बीवी से हारून रशीद ने कहा आज की रात में अगर तू मेरी हुकूमत से नहीं निकली, जहां जहां तक मेरी हुकूमत है, तो तुझे तलाक है। बादशाह ने बीवी को कह दिया, बाद में उसको होश आया मैंने क्या कह दिया, ये उनकी प्यारी बीवी थी और अल्फाज बोल दिए, अगर तू ना निकले मेरी हुकूमत जहां जहां उस कंट्री से बाहर, तो तुझे तलाक। अब उस जमाने में प्लेन तो था नहीं कि उसको जेब में बिठा दिया और निकाल दिया। इतनी बड़ी हुकूमत है हारून रशीद की, कैसे निकलेगी, हाउ शी गोना गो आउट ऑफ द कंट्री। ही वॉज रनिंग अ सो यू कैन से ह्यूज प्लेस के ऊपर उसकी हुकूमत चल रही थी। अब ऊंट घोड़े पर भी बैठे ना, उसको भगाएं तो अभी सुबह तक नहीं निकल सकती। तो फिर अब ये बहुत परेशान है। सब मौलवी साहब ने कहा यार तुम अगर वो नहीं गई तो तलाक हो जाएगी, नहीं गई तो तलाक हो जाएगी। देखा तो किसी ने कहा इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे, जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द है, उनको पूछा। उन्होंने कहा तलाक नहीं होगी, एक काम करो मस्जिद में बिठा दो। क्या कहा, मस्जिद के अंदर में बिठा दो, इसलिए कि मस्जिद में हारून रशीद की हुकूमत नहीं है। किसकी हुकूमत है, अल्लाह की हुकूमत है, वो तलाक नहीं होगी। इस बात के ऊपर हारून रशीद बहुत खुश हो गया, तलाक भी नहीं हुई, मस्जिद में बिठा दिया, रात भी पूरी हो गई, कंट्री से बाहर भी नहीं गई और तलाक भी नहीं हुई। उस पर हारून रशीद इतना खुश हो गया कि उनको बहुत बड़ी दावत दी और उनको काजी बनाया, जज बनाया इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को। अब उनका घर थोड़ा दूर था, दूर घर था, तो उस जमाने में एक पालटी होती है, दो आदमी वो खींचते हैं, उसमें आदमी जो बहुत बादशाह होता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको बिठा करके पालटी में यहां से वहां ले जाते हैं। आजकल घोड़ा गाड़ी है, उस जमाने में पालटी थी, उसको बिठा दिया, छोड़ के आओ। लेकिन जा रहे थे रास्ते में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये घर जो है ना इसमें से यहूदी को बुलाओ, यहूदी को बुलाओ भाई। यहूदी ने, पहले यहूदी का मकान यहां तक था, उसने उसको एक्सटेंशन करके वो रास्ता बंद कर दिया था, इतना ही रास्ता था। तो इमाम यूसुफ ने उस यहूदी को कहा था भाई हमारे लिए अच्छी तरह आने जाने का रास्ता रख। उसने कहा जब तू पालटी में बैठ के आएगा तो मैं कर दूंगा, मजाक के तौर पर उसने कहा। जब तू पालटी में बैठ, उसको क्या पता कि अल्लाह के यहां ये पालटी में बिठाए जाएंगे, तो इस यहूदी को बुलाओ। तो यहूदी ने देखा ये तो बादशाह के आदमी है उठाने वाले और इमाम यूसुफ बैठे हैं अंदर में, तो उन्होंने फौरन माफी मांगी, यहूदी ने माफी मांगी और उस जमीन को तोड़ा, उस जगह में उस दीवार को तोड़ा, तोड़वाया और फिर इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पर गए, चूंकि बादशाह का हुक्म था उनको छोड़ने का घर तक, तो बिल्कुल न चले। तो ये हारून रशीद वक्त का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, इसकी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत थी, ये इसकी बीवी कुरान से बहुत मोहब्बत करती थी, कुरान से रोजाना 300 लड़कियां रात में और लड़की और दिन में पूरा दिन उसके घर में कुरान पढ़ती थी, सबको वो तनख्वाह देती थी, कुरान घर में 300 लड़कियां उसके घर में रोजाना कुरान पढ़ती थी, और इसको अपने कुरान से, अल्लाह के कुरान से बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा जब उसका इंतकाल हुआ तो खादिमा ने ख्वाब में देखा क्या गुजरी, उसने कहा अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे पूछा क्या लेकर आई है, तो मैंने कहा कि मैंने एक रिवर खोदी है, कहां तक, मक्का मुकर्रमा में आप जाओगे अरफात में मीना में, उस जमाने में हारून रशीद की बीवी ने वो रिवर खुदाई थी कि उसमें से मक्का वाले हाजियों को पानी मिले, क्योंकि उस जमाने में पानी की बहुत कमी थी, इसने स्पेशल कहीं दूर से हजारों लाखों दिरहम खर्च करके एक एक कुदाल पर इतने, क्योंकि वो तो पथरीली जमीन थी और उसको रिवर की तरह बना के लाना कितना मुश्किल था, बहुत ज्यादा खर्चा किया था हुकूमत का, पानी लाई थी और हाजी पानी पीते रहे। तो उसने कहा अल्लाह मैंने हाजियों के लिए एक रिवर खुदवाई है, वही एक अमल लेकर आई हूं। तो अल्लाह ने फरमाया वो अमल तो बैतुल माल के पैसे से था, तेरा अपना अमल क्या है, वो तो हुकूमत के पैसे से था, ये बनाते लोग अपने पैसे से बनाते रोज, हुकूमत के लोगों के टैक्स वगैरह लोग उसे बनाते हैं, लोग बैतुल माल में पैसे जमा करते उससे बनाते हैं, उस जमाने बैतुल माल में लोग माल जमा करते रहे, जकात है सदकात है सब कुछ, तो ये तो अब तो गवर्नमेंट की तरफ से सब बनाया जाता है, वो तो गवर्नमेंट का पैसे थे, तेरी क्या तेरा क्या अमल है वो बता। तो उसने कहा मुझे याद नहीं, मैं तो परेशान हो गई, तो अल्लाह ने खुद मुझे कहा मेरे पास, मेरी माए और बहने सुने, अल्लाह ने कहा मेरे पास तेरा एक अमल है, वो अमल ये है कि एक मर्तबा दोपहर में तू खाने बैठी हुई थी और तेरे हाथ में लुकमा था, द मोसल वॉज इन योर हैंड, यू वॉज नियरली टू गो पुट इन योर माउथ, अभी रखने ही जा रही थी कि मुअज्जिन ने अजान दी और तेरे कान में आवाज आई अजान की, तूने लुकमा मुंह में रखने के बजाय नीचे रख दिया और अपने बाल को स्कार्फ से ढांक दिया, एक अजान के अदब में रिस्पेक्ट में, उसकी वजह से आज मैं तेरी मगफिरत करता हूं। छोटा अमल है, छोटा अमल, समझ बात आ रही है, ये हारून रशीद है। तो हारून रशीद ने काजी यहिया इब्ने अकसम रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी, आइए मेरे घर में एक रात गुजारिए मेहमान की तरह। हारून रशीद की इस बात को उन्होंने कबूल कर लिया, और इसलिए कि हारून रशीद की हुकूमत कौन बात नहीं कबूल करेगा, मैंने कहा ना उसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। एक मर्तबा ऐसे बादल जा रहा था, बादल होता है आपने देखा कि बादल जा रहे हैं, देखा कभी आसमान में, द क्लाउड्स यू कैन सी इज वॉकिंग गोइंग, तो हारून रशीद ने कहा था ए बादल तू कहीं पर जाकर बरस, तेरे पानी से बारिश के पानी से जो भी अनाज और गल्ला पैदा होगा उसका खराज उसका टैक्स उसकी जो जकात वो मेरे ही खजाने में आने वाला है, इसलिए सारी मेरी हुकूमत है। वो तो बादल कहां जाएगा, कहां पर से इतनी बड़ी उसकी खैर। तो यहिया इब्न अकसम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रात में मैं तो चला गया, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे यहिया इब्न अकसम रहमतुल्लाह अलैह, चले गए रात गुजारने के लिए। रात में बादशाह को पानी की जरूरत पेश आई तो जोर से आवाज दी खादिम को पानी लाओ, सो वो खादिम नींद से उठा और कहने लगा दिन में भी चैन नहीं रात में भी चैन नहीं देता ये बादशाह, दिन में भी काम कराता रहता है रात में भी चैन से सोने नहीं देता। तो इस तरह बरबराते बरबराते हुए वो खादिम पानी लेके ले जाते। देखा बहुत से मतलब खादिम को आप काम सुपुर करते हैं तो बकते हुए चले जाते हैं, बहुत से मतलब ऐसा होता है, हर जगह में होता है। तो ऐसा है बरबराते हुए। सो ये अपने वक्त के बादशाह को बरबरा रहा है, कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो अगर उसको पता चल जाएगा तो इसकी तो गर्दन उड़ा देगा कि तूने मुझे गालियां दी। लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा, सुना सुना उसका, कुछ नहीं कहा। तो यहीया इब्न अक्सम रहमतुल्लाह अलैह ने हारून रशीद से कहा, अमीरुल मोमिनीन एक नौकर, वो तो गुलाम था, उसका मालिक था बादशाह का, उसने आपके साथ ऐसा मामला किया कि बरबराता हुआ जा रहा था। किसको कहा? बादशाह को कहा, और आपने उसको कुछ कहा नहीं, क्या बात है? तू बादशाह है, बादशाह की बात के खिलाफ कोई गाली भी दे तो, कोई एक लफ्ज भी जोर से बोले तो। उस जमाने के बादशाह भाई, ये तो कुछ भी नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसको तो देखो कितनी गाली देते हमारे ट्रंप भाई को, नेतन्याहू कितनी गाली देते लोग। उस जमाने के बादशाह को कौन गाली दे सकता था? वो तो गर्दन उड़ा देंगे। ये लोग कितनी गालियां पड़ रही सुबह से शाम तक, न मालूम कैसे कैसे उसके पुतले बनाए जा रहे। लेकिन यहां तो देखो, तो आपने कुछ कहा नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया आपने, कहना तो वो यू कैन से यू डिडंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। तो हारून रशीद ने कहा, भाई वो तो बद अखलाक है, तो मैं क्यों उसके साथ बद अखलाक बनू? वो तो है ही ऐसा निकम्मा, मैं क्यों उसके साथ बैड कैरेक्टर के साथ पेश आऊं? जैसे कुत्ते की आदत काटने की है, भौंकने की है, तो अगर वो आपको काट ले तो क्या आप जाके कुत्ते को काटेंगे? अगर कुत्ता किसी को काट ले तो आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे, लेकिन क्या आप काट लेंगे उसको? सीधी सी बात, इसलिए हकीकत तो यही है कि किसी की बुरी आदत की वजह से हमें अपने अखलाक खराब नहीं करने चाहिए। सामने वाला बुरी आदत वाला है, लेकिन हमें तो अपने अखलाक दिखाने हैं। ये बात हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं कि वो खराब है किसी के साथ तो हम भी उनके साथ खराबी के साथ पेश आए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, आयशा वो तो है ही अपनी कौम का बुरा आदमी, क्या मैं भी उसके साथ बुरा बन जाऊं? तो मैंने उसका वेलकम किया, स्माइल फेस के साथ उसके साथ बात की, नरमी के साथ, ठीक हो सामने वाला जैसा भी है, लेकिन मैं तो अपने किरदार बताऊं, अपने अखलाक बतलाऊं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाज मरतबा शोहर जरा तुशरू सख्त होता है, फिर भी अगर बीवी मोहब्बत प्यार के साथ, नरमी के साथ, खुश कलामी के साथ बात करेगी, इंशाअल्लाह उसके अखलाक का असर उस पर जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं हाँ तूने मुझे ऐसा कहा, अगर उसने सामने से, इसने भी सिंग लगाए उसने भी सिंग लगाए, तो फिर क्या होगा? खून निकल जाएगा, और खून निकलते निकलते फिर दोनों अलग हो जाएंगे। समझ में आई बात? इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इफ समवन्स इज बैड दे हैव टू बी गुड विद देम। यही चीज अपने बच्चों के साथ, नौजवान लड़कों के साथ मैं कहा करता हूं मां और बहनों को, कि जब मां नाराज हो जाती है बच्चों से, बहुत दिन तक उससे बिल्कुल तुर्श रुई के साथ बात नहीं करती, फुला और फुला और फुला और फुला, ठीक है कभी कभार ठीक है, लेकिन एकदम उससे इस तरीके से बर्ताव करना जैसे वो तुम्हारा बेटा ही नहीं, वो तो खराब है, तुम उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आओ, वो समझेगा या मेरा बाप मेरी माँ बहुत अच्छे है, आई एम डूइंग सो मेनी बैड थिंग्स बट स्टिल दे आर सो गुड विथ मी, लेट मी चेंज माय लाइफ। मेरी बात सुना रही है? अच्छी अखलाक का असर जरूर पड़ेगा, आप सामने वाले के साथ खुश कलामी नरमी से बात करेंगे, हंसते हुए चेहरे से बात करेंगे, उस बच्चे पर, उस स्टूडेंट पर, उस मुरीद पर, उस शौहर पर, उस बीवी पर, उस मुसल्ली पर, उस आदमी पर जरूर उसका असर होगा। ये बात लिख कर जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो तो बद किरदार है, ही इज अ बैड पर्सन, मैं क्यों अपने आप को बुरा बनाऊं और उसके साथ बद अखलाकी से। तो अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, वेलकम हिम, स्माइल एट हिम, आई वाज टॉकिंग टू हिम सो नाइसली। देन हजरत आयशा फरमाती है, आपने तो अभी कहा ये तो बुरा आदमी है और आप उसके साथ बिल्कुल नरमी से बात करते, तो क्या जवाब मिला? वो बुरा है, मैं क्यों अपने आप को बुरा बनाऊं, ही इज अ बैड पर्सन, व्हाई आई मस्ट मेक माय सेल्फ बैड विद हिम। मेरी बात सुन रहा है? दिस इज द lesson we have to learn from the hadith of Rasulullah. आज दुनिया में ऐसा नहीं है, आज तो ये मारे तो ये भी मारेगा, वो बुरा है मैं भी बुरा हूं, नहीं, वो आदमी बुरा है हम उसके सलाम भी नहीं करते। If someone is a druggy आदमी, ठीक है वो drug पीता है, बुरा आदमी है, लेकिन आप अखलाक के साथ मिलकर उसको दो बात कहो यार, बहुत प्यार के साथ उसको कहो। मैंने इस पिछले हॉल के अंदर में दो नौजवान थे, उसको मैंने इसी प्यार के साथ, मुझे पता चला कि अभी ड्रग्स शुरू कर रहे हैं, शुरू किया है उन्होंने, मैंने बहुत प्यार के साथ उसको समझाया। मैंने कहा बेटा देखो तेरे को ये नुकसान होगा, मैं तेरे साथ देखो इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं तेरे से मान का करता हूं। बिलीव कि उसने मुझे क्या कहा मुफ्ती साहब, दैट डे वाज स्पोकन टू मी आई लेफ्ट एवरीथिंग। कभी कभी इंसान दिल से बात करे ना, अपने अखलाक बदलाए, खुशखल की, चूंकि सुन्नत रसूल में बरकत जरूर होगी, सुन्नत रसूल है ये, सामने वाले के साथ नरमी से बात करना, आज नहीं कल नहीं परसों तरसों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, वरना अल्लाह कुरान में कहता है वलौ अन्न कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्ध, अगर ये कुरान पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ भी कट जाए, लेकिन पहाड़ से ज्यादा हैवी heavy the heart of his companions when they were non-Muslim, काफिर थे सहाबे किराम, जब मुसलमान नहीं थे उनके दिल पहाड़ से ज्यादा heavy थे। और आगे अल्लाह क्या कह रहे हैं, औ कुल्लिम बिहिल मौता, if you reach to the dead person, the dead person also get life, ये लोग उनका दिल मर चुके थे, the heart was death, सहाबे किराम के यानी जब कुफर में थे, the heart was death, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नरमी से ऐसा बर्ताव किया कि हजरत उमर जैसा पहाड़ आदमी जिसका दिल इतना सख्त था और तलवार लेकर निकला, आई एम गोइंग टू कट द चॉप द नेक ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह, एंड ही सो द गुड कैरेक्टर, ही हर्ड द कुरान एंड ही सो द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड व्हाट हैपेंड, ही मेल्टेड, नरम हो गया, किसके सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और फिर क्या कहा अल्लाह के रसूल, अब तो हम खुलकर इबादत करेंगे मताब में, चलो मेरे साथ, हाथ पकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज अ राइट हैंड मैन, हजरत हमजा वाज अ लेफ्ट हैंड मैन, एंड दे ब्रॉट द सहाबा ऑल टुगेदर 40 सहाबा, एंड फर्स्ट डे आफ्टर एक्सेप्टिंग ईमान उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, दे परफॉर्म द फर्स्ट लीडर नमाज इन मताफ ओपनली। हजरत उमर ने क्या कहा, है किसी ने अपनी मां का दूध पिया हो, आज उमर मुसलमान हो गया है, आज नबी का साबी है, अगर किसी को अपनी मां को अपने बच्चों को यतीम करना हो तो आओ मेरे सामने। ये थी उमर, देखो कितने सख्त थे और कैसे उनका दिल मैच हो गया। इसलिए इस सुन्नत को जरूर अपनाएं, घर के झगड़े खत्म करना हो तो दोनों तरफ से न लड़े, अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। इसलिए कि आपने हमारे शेख फरमाते हैं हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जो वायरिंग है ना, वायर में दो किस्म के तार होते हैं अंदर में, एक हॉट है एक कोल्ड है। अंदर में अब किसी इलेक्ट्रिशियन को पूछ लेना, एक गर्म है और एक कोल्ड है, दोनों गर्म नहीं, दोनों ठंडे नहीं है, अगर दोनों गर्म है तब खत्म, और अगर दोनों ठंडे है तो शुरू नहीं होगा। इसलिए उनके अंदर में भी एक गर्म और एक ठंडा है, अगर दोनों गर्म हो जाए फौरन, बीवी और शोहर दोनों, तो फिर फ्यूज तो खत्म उड़ ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, आई बात समझ के अंदर। और अगर दोनों ठंडे हैं तो भी मुसीबत, बच्चे कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, है ना। इसलिए अगर शोहर गर्म है तो बीवी ठंडी हो जाए, न के बर शुरू कर दे। और बीवियों का औरतों का एक किस्म का म्यूजिक होता है, वो डिफरेंट म्यूजिक है, ये म्यूजिक नहीं जो हम सुनते हैं, नहीं, ये म्यूजिक डिफरेंट होता है, ये जब चलता है ना तो आप बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, जब म्यूजिक बंद हो जाए वापस आ जाओ। अगर बीवी गर्म है तो शोहर ठंडा रहे, समझ में आई बात, वो तो होता है, बीवी मारती नहीं लेकिन बोलती जरूर है, समझ में आई बात। अभी कभी किससे सुनाऊंगा फिर मुंह के, सुनना कम, देखना कम, लेकिन बोलना ज्यादा, ये डेंजरस है। समझ में आई बात? इसलिए अपने घर के लोगों के साथ अंदाजा लगाइए कितना अच्छा अदब सिखाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप इसी एक तालीम को, दिस वन मैसेज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू ब्रिंग इन योर लाइफ, समाज में, माशरे में बहुत सारे मसाइल ईज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ये एक सिर्फ घर का ही मसला नहीं है, बाहर भी यही मसला है। मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां कहीं भी हो जी। लेकिन हमारा हाल तो ये है, जरा जरा सी बात पर एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं। ये ऐसा है। और उसी बदगुमानी की वजह से हम उसके साथ अच्छे अखलाक से मिलते नहीं है, नहीं मिलते। अब बहुत सारी फिर खराबियां, फिर ताल्लुकात टूट जाते हैं। अपने घर के लोगों के साथ तो और ज्यादा उसका एहतमाम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो रात दिन का घर में रहना है, रात दिन का रहना है, घर में रहना है। तो आजकल मामला बिल्कुल उलट है, डिफरेंस है। परायों के साथ बहुत हंसी और खांसी, हंस हंस कर बोलता है, लेकिन जब घर में आ जाता है तो उसका मूड ही चेंज हो जाता है। मेरी भी यही हालत होगी, आप सबको नहीं कह रहा हूं, मेरे मुझे मैं ये खिताब में कर रहा हूं अपने आप को। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब कोई आदत तुम्हारे अंदर तो उसको ज्यादा बोलो तो वो खत्म हो जाए। तो ऐसा मालूम होता है कि ये वो आदमी है ही नहीं, अभी बाहर कुछ और डिजाइन वाला था, घर में आके इसकी डिजाइन बदल गई। ये आदमी वही नहीं है, कुछ और बदला हुआ है। चेहरा भी बड़ा भयानक बनाकर आ जाता है, ऐसा जैसे भी खा जाएगा बीबी को, या बीबी शोहर को खा जाएगी। और घर वाले भी ऐसे दबकर बैठ जाते हैं कि पता नहीं आज क्या बला घर में आई है, आज क्या बला, सुन रहे हो, आज क्या बला घर में आ रही है। आहा, वो भी वजीफा पढ़ती होगी बीबी, या रब्बी सल्लिम सल्लिम, या रब्बी सल्लिम सल्लिम, ए रब सलामती रखना, सलामती रखना, कहीं डंडे न मारे, कहीं गुस्सा न करे, गालियां न पड़े। हमारा मिजाज ऐसा ही है। हालांकि आदमी के अखलाक देखो, आप खुद देखिए, ये नरम अखलाक के साथ बीवी अपने शौहर के साथ, अपने अखलाक बच्चों के साथ, शौहर अपने बीवी के, ये सबक सबके लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत सबके लिए है, मर्द हो या औरत हो, स्टूडेंट हो, मुसल्ली हो, टीचर हो, सबके लिए अखलाक। अखलाक तो ये है कि 24 घंटे में जिसके साथ पाला ज्यादा पड़ता है उसके साथ तो ये अखलाक होने चाहिए। बताए आपका ओपिनियन क्या है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? टेलिंग यू राइट और रॉन्ग। लेकिन जिसके साथ 24 आवर्स घर में रहता है उसके साथ मूड चेंज है, और जिसके साथ 5-10 में उसके साथ बहुत अच्छा है, गलत है। साहबे किराम ने एक औरत के मुतालिक आकर अर्ज किया, साहबे किराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फुल्ला औरत है ना, बहुत नमाजें पढ़ती है, बड़ी नमाजी है ना, अल्लाह के नबी, रोजे भी बहुत रखती है, तस्बीह भी बहुत खींचती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बैठकर इतनी तस्बीह खींचती है, इतनी तस्बीह, बड़ी इबादत गुजार है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी औरत, बहुत, ऐसा नहीं कहा, क्या पूछा, वो उसका मामला पड़ोसियों के साथ कैसा है, देखा उसका मामला, डीलिंग, हाउ इज शी विद नेबर्स, हाउ इज शी विद नेबर्स, पूछा, नो बैड, वेरी बैड, गालियां देती रहती है, तस्बीह भी पढ़ती है और एक गाली भी देती है, एक तस्बीह पढ़ी, एक गाली दी। समझ में आई बात, मेरी बात सुनो, ये अल्लाह के नबी की बात सुना रहा हूं मैं, बड़ी नमाजी है, बड़ी रोजदार है, बड़ी इबादत गुजार है। तो अल्लाह के रसूल सासन खुश नहीं हो गए, पूछा, हाउ इज शी विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ कैसी है, लोगों के साथ कैसी है, ना ना ठीक नहीं है। ओ आप सासन फरमा, वो तो जहन्नमी है, क्या फरमाया, वो तो जहन्नम में जाएगी,
सुनी बहुत नमाज पढ़ती है तस्बीह तो जन्नत में जाएगी, वो जहन्नम ही है।
हाँ
ये सही हदीस है, मुस्नद अहमद में लिखी इस हदीस का नंबर भी बतला दो, 9272 हदीस नंबर है। तब देखिए फिर साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल दूसरी औरत के मुताबिक फर्ज नमाज तो पढ़ लेती है लेकिन कभी इशराक चास नवाफिल कुछ नहीं पढ़ती है, रमजान के रोजे तो रख लेती है लेकिन और कोई रोजे रखती वक्ती नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा नेबर के साथ कैसी है, नेबर के साथ कैसी है, तो कहा बहुत अच्छी। हाँ उनके साथ नरमी से मिलना, नेबर के साथ खुश अखलाकी से मिलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती हैं। देखा क्या है, आप क्या फैसला करोगे, बहुत नमाज पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली, तस्बीहात पढ़ने वाली, आप तो यही कहेंगे जन्नती औरत है। लेकिन अगर उसकी डीलिंग ठीक नहीं है, उसके अखलाक ठीक नहीं है शौहर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, तो फिर अल्लाह के नबी का फैसला सुन लो। हाँ थोड़ी नमाज है, थोड़ी इबादत है, लेकिन हुकूकुल इबाद में हक अदा करने में बंदों के नंबर वन है, तो फिर ये जन्नती है। आपने नहीं देखा बहुत सारी औरतें, आप कहेंगे तो सर नमाज भी नहीं पढ़ती थी, बहुत कम नमाज पढ़ती होगी तो फर्क, लेकिन रमजान में इंतकाल हो गया इसका, तो ईद के दिन इंतकाल हो गया, जुमा की रात में इंतकाल हो गया। कोई अखलाक उसके जो अल्लाह को पसंद आए, कोई अमल ऐसा है, अल्लाह तो नुकते नमाज है किसी एक चीज के ऊपर, अल्लाह क्या कर देता है माफ कर देता है। एक बुजुर्ग मुहद्दिस थे, इंतकाल हुआ तो अल्लाह फरमाते हैं उसे जब ख्वाब में देखा गया उनको, हजरत थानवी रहमतुल्लाह सवाकी को लिखा है आपकी मगफिरत हो गई, फरमाए हाँ एक चीज के ऊपर। उन्होंने इतनी हदीस की किताब लिखी और 50-60 साल तक हदीस पढ़ाते थे और किताबें लिखी, तो फिर कैसे उन सब किताबों की वजह से मगफिरत हो ही? नहीं नहीं नहीं, ना बयान की वजह से, ना नमाज पढ़ाने की वजह से, ना किताबें लिखने की वजह से, ना लेक्चर्स की वजह से, किसी वजह से नहीं। मुझे तो अल्लाह ने कहा तेरे एक अमल की वजह से, वो क्या है, एक मर्तबा तू पेन से ऐसे लिख रहा था हदीस को लिख रहा था, और तू उस जमाने में इंक पॉट में ऐसी पेन लकड़ी की पेन होती थी, इंक पॉट में डालो फिर लिखो, इंक आज की तरह थोड़ी पेन लिख करते उस जमाने में, ऐसी इंक में डाली पेन को फिर लिखते थे, तो ऐसे जैसे अंदर में डाली उठाया एक मक्खी आ गई बैठ गई, तो इन्होंने अपने पेन को पकड़े रखा कि ये प्यासी होगी लेट्स ड्रिंक पीने दो उसको, जब ये पी करके उड़ गई फिर लिखना शुरू किया, कहा तूने मेरी एक मखलूक पर रहम किया आज मैं अल्लाह तुझ पर रहम करता हूं। लिटिल थिंग्स कैन यू इमेजिन, छोटी चीज है तो अल्लाह किस पर माफ कर दे हमें पता नहीं है। तो मैं कह रहा था आपको कि हजरत मुफ्ती तकी साहब नबरल्ला मरकदहू फरमाते हैं आदमी के अखलाक का सारी दुनिया में खूब चर्चा हो रहा है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा उस घर, लेकिन उसके घर वाले उससे खुश नहीं है, औरतों के बड़े चर्चे हो रहे हैं लेकिन उसका घर वाला या उसकी घरवाली दोनों में से खुश नहीं है, वो अखलाक किस काम के। पूरी दुनिया आपसे फैज उठा रही है, पूरी दुनिया क्या मदद करते हैं लेकिन फिर अखलाक, कोई सखी तो कह देगा, तो बड़ा अल्लामा तो कह देगा, लेकिन जो अखलाक होने चाहिए वो नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वख्फिद जनाहका लिलमुमिनीन वला तमुद्दन्ना, क्या कहा दुनिया के मुख्तलिफ काफिरों को, कहा मुशरिकों को, कहा काफिरों को, कहा मुशरिकों को, कहा यहूद नसारा को, कहा कि दुनिया की नेमतें हमने बरतने के लिए दिए, दुनिया की नेमतें किस लिए दिए, किस लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए, ये गाड़ी है, ये घर है, खाना है, इस्तेमाल करने के लिए, उसके पास दौलत कितने दिन रहेगी भाई, कितने दिन रहेगी, जब तक दुनिया में है वहां तक, मर गया तो चली गई मिरास में, फिर उनके हाथ से छीन ली जाएगी और फिर उनके साथ जो मामला करने वाला, जो मामला होने वाला है वो होकर रहेगा कब्र में। इसलिए अल्लाह फरमाते नबी से उनकी तरफ, कुफार की तरफ, यहूद की तरफ, मुशरिकीन आंख उठा कर ना देखना, ओ बहुत मालदार है, ओ बड़ी बड़ी गाड़ियां, कभी नहीं देखना उनकी तरफ, ये थोड़ी देर के लिए है, फॉर लिटल वाइल्स, फिर आप हमारे पास आएंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत। तो सहाबे किराम के मुताबिक क्या कहा, अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, और कुरान की दूसरी आयत है, वलव कुंत फज्जन गलीजल قلب لن فضوا من حولك, ऐ मेरे नबी अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप बहुत हार्श होते सख्त, तो ये कोई भी मुसलमान ना बनता, ये सहाबा इस्लाम कबूल ना करते, लेकिन आपकी खुश अखलाकी नरम गुफ्तगू से इन लोगों के दिल जो पत्थर से ज्यादा सख्त थे उनको आपने नरम कर दिया, और आज कुरान में अल्लाह ने उनके लिए लिख दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। एक हदीस सुना देता हूं, चूंकि आइंदा नेक्स्ट वीक से प्रोग्राम नहीं होगा, मैं हज में जा रहा हूं इंशाल्लाह ट्यूजडे को, तो वेनेसडे को मैं नहीं हूंगा, सो बी इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टू वीक्स, में पहले को आ जाऊंगा इंशाल्लाह, पहले यानी उसके बाद पहले के बाद पहले पहले हफ्ते में जून की इंशाल्लाह वेनेसडे आएगी, फिर प्रोग्राम होगा। तो एक आखिरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, यह हदीस है बुखारी रजी अल्लाह की कि अच्छी बात करना भी सदका है। शोहर अपने बीवी के साथ, बीवी अपने शोहर के साथ, शोहर माँ बाप अपनी औलाद के साथ, इसी तरह शेख अपने मुरीदों के साथ, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छा कलाम करें, अच्छी तरह गुफ्तगू करें, नरमी से मिले, हंसते चेहरे से मिले, यह भी सदका है। तो आप दिन में कितने सदके का सवाब कमा सकते हैं, उन्होंने बात आ रही है। इसलिए ये बात जरूर याद रखें कि अपनी जिंदगी के अंदर में अच्छे अखलाक वाली जिंदगी बनाएं। इत्तकुन्ना वलव बिशक की तमरा, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, चाहे एक खजूर के टुकड़ा ही क्यों ना हो, दे दो अल्लाह के रास्ते में। आगे क्या फरमाया, फमल्लम यजिद फबिकलिमतिन तैयबा, अगर तू इतना गरीब है कि खजूर भी तेरे घर में नहीं है, तो अच्छी बात, नरम गुफ्तगू, अच्छा लहजा, किसी के साथ हंसता चेहरे से बात कर ले, इससे भी जहन्नम से बच जाएगा। अल्लाह ने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या अरहमुर रहीमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या अकरमुल अकरमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हम पर रहम फरमा, या अल्लाह करम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा, या अल्लाह हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली जिंदगी नसीब फरमा, सुन्नतों वाली जिंदगी नसीब फरमा, या अल्लाह तुम से राजी हो जा, या अल्लाह हमें अच्छे अखलाक नसीब फरमा, अच्छे किरदार नसीब फरमा। या अकरमुल अकरमीन, या अरहमुर राहिमीन, अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी औलाद के साथ, इलाहुल आलमीन दोस्तों अहबाब के साथ, मुसलमानों के साथ, ए अल्लाह हर एक के साथ, ए अल्लाह अच्छे अखलाक वाली जिंदगी नसीब फरमा, ए अल्लाह परेशानियों मुश्किलों को दूर फरमा, बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इस दरस हदीस को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे हज के सफर को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे हज के सफर को कबूल करना, हज के सफर को कबूल कर ले, या अल्लाह हर साल अल्लाह में हज मबरूर नसीब फरमा, अल्लाह हमारे हज को हज मबरूर बना, अल्लाह हज मकबूल बना, अल्लाह हमें इस हज के लिए हर साल कबूलियत से माला माल फरमा। या अल्लाह तो अपने फजल से, अल्लाह तू ले जाता है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, यकीनन लब्बैक पड़ा है, इसीलिए तू बुलाता है कोई बहाना बनाकर, ए अल्लाह ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरा फजल है, तेरा करम है, वरना हम कहाँ कदम उठा सकते थे। अल्लाह तो बार बार हम सबको हज मबरूर नसीब फरमा, हज मकबूल नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिन जिन के लिए वहां दुआ की जाए, सलाम पेश किया जाए, ए अल्लाह उन सलाम को भी कबूल कर लेना, सबके लिए दुआओं को कबूल कर लेना। ए अल्लाह जिन जिन के लिए मगफिरत की, आफियत की, सेहत की दुआ की जाएगी, ए अल्लाह सबको तू कबूल कर लेना। इलाहुल आलमीन इन जितने भी लोग आए हैं बयान सुनने के लिए, ए अल्लाह इनकी दुआओं में, ए अल्लाह मेरा मेरा हिस्सा भी रखना, वो दुआएं करेंगे मेरे लिए इस सफर के लिए, अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल कर लेना, अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल कर लेना। या अल्लाह तू जानता है जितने लोग मुझे अपनी दुआओं में याद करते हैं, मैं सबको अपनी दुआओं में याद करता हूँ, अल्लाह मेरी दुआएं उनके लिए कबूल फरमा, अल्लाह हमारे इस मजमे को कबूल फरमा, उनके आने को कबूल फरमा, उनके बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह परेशानियों मुश्किलों को दूर फरमा, हमारी और हमारे आलो औलाद की, रिश्तेदारों की, करीब और दूर के रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, मुरीदीन की, मुतालिकीन की, पूरी उम्मत की, इस मजमे की सबकी मगफिरत फरमा, सबकी मगफिरत फरमा, दुनिया भी बना दे, कब्र भी बना दे, आखिरत भी बना दे, जहन्नम से बचा ले, अर्श के साए में जगह अता फरमा देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथों से हौदे कौसर का पानी नसीब कर देना। अल्लाह अपने फजल करम से, अपने रहम करम से हमारी दुआओं को इनामीन कहने वाले मर्द और आमीन कहने वाली औरतों के आमीन के साथ कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद व अलिहि व सहबिहि।